मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 16 सितंबर 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लास के लिए दाखिला लिया है। इन मित्र का नाम है हार्दिक वशिष्ठ, जिनका गांव है मालेंदी, जिला शामली, उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं थोड़े से एक अलग विषय पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं और वह है कि तो क्या आपको आईएएस बनना चाहिए। इस विषय को मैंने क्यों चुना है, इस पर हम लोग बाद में बातें करेंगे। आइए पहले कुछ दूसरी महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने COP14 के बारे में बात की थी। ग्रेटर नोएडा में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थल के विरुद्ध युद्ध या जंग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन, जिसे हिंदी में अभिसमय कहा जाता है। आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कन्वेंशन के लिए अभिसमय ट्रांसलेशन पाएंगे। और ये बहुत लंबे समय तक चला, 2 से 13 सितंबर तक, और लगभग दुनिया के 200 देशों ने इसमें भाग लिया था। इसकी प्रारंभिक जानकारी मैंने आपको दी थी, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था, तो भारत के संदर्भ में मैंने वहां बातें की थी। दोस्तों, अब यह सम्मेलन समाप्त हो चुका है। नई दिल्ली नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया गया है जिसमें उन बिंदुओं का उल्लेख है कि किस तरह से पूरी दुनिया मिलकर लगातार जो मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, भूमि क्षरण होता जा रहा है, उसका मुकाबला करेंगे। इसके लिए कुछ सूत्र निकाले गए हैं, मैं उनके बारे में यहां बातें नहीं कर रहा हूं, वो आपको मैगजीन में मिल जाएंगे, उसमें व्याख्या करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि कुल मिलाकर के उन सूत्रों के जो केंद्र में है वो यह कि मरुस्थल का जो फैलाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है उसे कैसे रोका जाए, या यूं कह लीजिए कि भूमि को कैसे कंजर्व किया जाए, जल का कैसे संचयन किया जाए ताकि जो मरुस्थल का फैलाव है वो रुके, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि भूमि के क्षरण में सबसे बड़ा हाथ जो है वो क्लाइमेट चेंज का है, तो इसको लेकर के क्या क्या किए जाने चाहिए, तो आपस में सहयोग किया जाए, इस पर रिसर्च किया जाए, टेक्निकल कोऑपरेशंस किए जाएं, धन की व्यवस्था की जाए, ये सारे बिंदु ही उसके तहत हैं, तो मैं उनकी चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। बस दो बातें आपसे बताना चाहूंगा। पहला तो ये है कि अब भारत इसका अध्यक्ष हो गया है और 2 साल तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी, यानी कि चूंकि भारत अध्यक्ष है तो यह टॉपिक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। और दूसरी बात यह कि मालूम है कि आपका पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्री और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसलिए इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों, न्यूज में आपने सुना होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति, इसकी कल बैठक हुई और खासकर मध्य प्रदेश और देश के दूसरे क्षेत्रों में जो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो एक तरह से आपदा आ गई है उसके बारे में एक मीटिंग ली गई थी। खैर, उसकी चर्चा मैं नहीं करने जा रहा हूं, मैं केवल आपको दो बातें बताऊंगा कि 2005 का जो हमारा आपदा प्रबंधन, हमारी जो नीति है, उस नीति के तहत हमने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। यह आपको मालूम होना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और ये कितना वजनी है, कितना महत्वपूर्ण है, इसकी कल्पना आप इसी बात से कर सकते हैं कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्राधिकरण के नीचे फिर और जो दूसरे तंत्र हैं जो विकसित किए गए, संस्थान जो विकसित किए गए, उसी में है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति, जिसके बारे में न्यूज में आपने सुना। इस समिति के जो हेड होते हैं वो होते हैं कैबिनेट सचिव। आप यूं कह लीजिए कि जैसे राजनीति में प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख होते हैं सरकार में, उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में सबसे प्रमुख होते हैं कैबिनेट सचिव। आप सोच करके देखिए कि जिस समिति के प्रमुख हेड कैबिनेट सचिव हों, वो फिर से अपने आप में कितनी पावरफुल कमेटी होगी। तो इन्होंने बकायदे मीटिंग ली है, तो खासकर मैं कैबिनेट सचिव और समिति के बारे में आपको कुछ बताने इसके माध्यम से जा रहा था। मैं आज आपको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, ये नव दुनिया का है जिसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई है। अभी उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी की है समान नागरिक संहिता के बारे में और उन्होंने कहा है कि ये कब तक बनेगा, मतलब उनका रुख इस बात की ओर है कि समान नागरिक संहिता भारत में बनाई जानी चाहिए और ये बहुत समय से लगातार चला आ रहा ये विषय। यहां मैं थोड़ी सी एक दो बातें आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। पहला तो यह है दोस्तों कि जो समान नागरिक संहिता है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है और इसके अनुच्छेद को आप रट डालिए, वह है अनुच्छेद 44। देखिए कुछ अनुच्छेद तो हमको रट लेने चाहिए बिल्कुल, या यूं कह लीजिए कि लिस्ट बना करके लगातार दोहराते रहने चाहिए। मैं सभी अनुच्छेदों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं कि यदि आप अपने आंसर में उसका उल्लेख कर देते हैं तो आपका आंसर काफी मजबूत बन जाता है। अनुच्छेद 44 जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य से अपेक्षा की है कि वो समान नागरिक संहिता बनाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जब हम समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं तो देखिए जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो डेफिनेटली थोड़े से भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि जब सबके लिए समान ही संहिता हो जाएगी तो फिर उनके अपनी भाषा धर्म संस्कृति संस्थान हो सकता है कि इस पर दबाव पड़े, इनके हित बाधित होते हों। तो ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो लगातार मूल अधिकारों की बात करके उसका विरोध करता है, तो ये संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है, दोनों के बीच में एक द्वंद्व की स्थिति है। मुझे ध्यान आ रहा है कि 2-3 साल पहले मेन एग्जामिनेशन में सीधे समान नागरिक संहिता पर प्रश्न पूछा गया था, तो चूंकि अब बीच में 2-3 साल का गैप हो गया है, अभी 2019 में तो संभावना कम ही है लेकिन 2020 में थोड़ी सी संभावना बन सकती है। और वैसे भी मैं बताना चाहूंगा कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें आप एवरग्रीन टॉपिक कह सकते हैं, तो समान नागरिक संहिता उसी तरह का एक एवरग्रीन टॉपिक है। इस पर आपको अच्छी तैयारी लगातार करते रहना चाहिए और अपने टॉपिक को आप अपडेट करते चले। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और आज के मुख्य विषय का मैंने शीर्षक रखा है तो क्या आईएएस बनना चाहिए। शीर्षक से ही आपको लग रहा होगा कि इसमें मैं आप सबसे प्रश्न पूछ रहा हूं और इनफैक्ट मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अभी कुछ समय से जो आईएएस अधिकारियों की जो गतिविधियां रही हैं, कुछ जो परिस्थितियां रही हैं, उनको देखते हुए आपके मन में क्या भाव आ रहा है, तो क्या बनना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे इशारे को आप लोग समझ गए होंगे। आपने अभी अभी अखबारों में पढ़ा है कुछ दिनों से, लगभग 2 सप्ताह से, कि कुछ आईएएस ऑफिसर्स जो बिल्कुल यंग हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने लंबी सर्विस की है और 5-7 साल की सर्विस बची है तो उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ी है, नहीं, सच पूछे तो उन्होंने 5-7 साल की ही नौकरी की है और उन्होंने आईएएस से त्याग पत्र दे दिया है। इससे पहले भी जब चुनाव हुए थे तो आपने खबरें पढ़ी होंगी कि बहुत से आईएएस अधिकारियों ने, सिविल सर्वेंट ने त्याग पत्र दिया, लेकिन उनके रीजन थे क्योंकि वो त्याग पत्र देकर के राजनीति में शामिल हो गए, तो वहां तो तुरंत समझ में आ रहा था, फिलहाल बात उतनी समझ में नहीं आ रही है। तो होता क्या है कि जब इस तरह से यंग आईएएस ऑफिसर्स रिजाइन करते हैं तो आप सब जो आईएएस बनने के बारे में सोच रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं, आपके दिमाग में एक बात आती है कि जिसको हम पाना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाने के बाद उसे छोड़ दिया है, या थोड़े से और भी कड़े शब्दों में यूं कहें कि ठोकर मार दिया है, तो फिर आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो सोच रहा हूं वो गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वो चीज नहीं है जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा हूं, तो मुझे फिर इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए। मैं दोस्तों केवल इसी बात के समाधान के लिए कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपके दिमाग में इस तरह की बात आ रही है तो फिर मैं क्यों बनने की सोचूं, तो मान करके चलिए कि अब आपका दिमाग आईएएस की तैयारी करते करते या उसके बारे में सोचते सोचते थोड़ा थक सा गया है और अब वह उस रास्ते की तलाश कर रहा है कि किस तरीके से मैं अब इसे छोड़ छाड़ कर बड़े तार्किक रूप से सम्मान के साथ अलग हो सकूं। तो नो डाउट आप कह सकते हैं तार्किक रूप में कि भैया वो लोग तो छोड़ रहे हैं तो फिर मैं क्यों इसके पीछे भागूं, मैं भी इसीलिए छोड़ रहा हूं। बिना बने छोड़ने का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर छोड़ना ही है तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी को याद करें, जो बनने से पहले ही जिन्होंने कह दिया था कि मैं छोड़ दूंगा, और बनने के बाद जब वो प्रोबेशन पीरियड में ही थे, ट्रेनिंग ही कर रहे थे, तो उन्होंने छोड़ दिया। और सच पूछे थे जब उन्होंने छोड़ा तभी वो इतने महान लीडर भी देश के बने, क्योंकि तुरंत वो प्रिय हो गए, पॉपुलर हो गए। पहली बात। यह कहीं न कहीं आपकी मानसिक कमजोरी के लक्षण को व्यक्त कर रही है और आप उस गली की तलाश में हैं जिसका सहारा लेकर आप चुपके से इस मुख्य द्वार से बाहर निकल के अलग हो सके। पहली बात। दूसरी बात, पूरे के पूरे देश में 5000 आईएएस ऑफिसर हैं, उनमें से मान लीजिए कि 5 लोग छोड़ देते हैं तो इनके बारे में तो आप सोच रहे हैं, लेकिन बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। दूसरी बात। तीसरी बात कि देखिए, जिन्होंने भी सर्विस छोड़ी है, छोड़ना उनका अधिकार है, साथ ही साथ उनकी अपनी रुचि भी है। हम उनकी रियल में सभी परिस्थितियों को नहीं जानते हैं, हम केवल उतना ही जानते हैं जितना अखबारों के जरिए हमें पता लगा है, और मान करके चलिए कि जितना हमें पता लगा है वह केवल आइसबर्ग की तरह थोड़ा सा ही हिस्सा है, ज्यादा हिस्सा हमें मालूम ही नहीं हुआ है, तो हम पूरे सच को नहीं जान रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली जब आप छोड़ते हैं और जब पब्लिक में आकर के बयान देते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप सही तरीके से चीजों को नहीं रखेंगे, आप एक ऐसा बयान देंगे जिससे पता लगे कि हम आप एक बहुत अच्छे नागरिक हैं और बहुत सही काम कर रहे हैं, और ये उनका अधिकार है और वो सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी बातें भी उसके साथ होती हैं। अगली बात मित्रों कि देखिए, आप आईएएस में आ गए, आपने एक स्तर पार कर लिया, आप यूं कह लीजिए कि आप एक ऐसे वृक्ष पर तो पहुंच गए, चढ़ गए हैं जो ऑलरेडी 200 मीटर ऊंची है। जब आप बहुत ऊंचे पर होते हैं तो दुनिया आपको देखती है, इसीलिए जब आप गिरते हैं वहां से तो फिर दुनिया आपको गिरते हुए भी देखती, गिरते हुए का मतलब यहां उस पतन से मैं नहीं लगा रहा हूं, आपने छोड़ा है, वहां से कूदा है, जब आपने वहां से जंप लगाया है तो दुनिया आपको जंप लगाते हुए देखती है और यह भी देखती है कि बाप रे आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचे, इतनी ऊंचाई पर तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो जब आप वहां से जंप लगाते हैं तो याद रखिए कि आपको लपकने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं, आपको अपनी गोद में बचाने के लिए लोग सामने आते हैं। आप इस बात को कतई मत भूलिए कि जो भी ये रिजाइन करके जा रहे हैं उनके पास विकल्प हैं और इसकी तुलना में बेहतर विकल्प हैं। अब जो बेहतर विकल्प हैं उनकी कुछ भी परिभाषा हो सकती है कि उसमें उनको सैलरी ज्यादा मिल सकती है, या उसमें उनके अपने लिए ज्यादा सुरक्षा मिल सकती है, या उनको उसमें अपनी रुचि का काम करने की वातावरण मिल सकते हैं, जो भी कारण हो, या इस सर्विस से उन्हें दूसरी तरह की दिक्कतें हो रही हो, किसी को कैडर खराब मिल जाता है तो उसको दिक्कत महसूस होने लगती है, कोई अपने पारिवारिक कारणों से छोड़ने लगता है, तो बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति एक जैसी नहीं है और हर व्यक्ति की रुचि एक जैसी नहीं होती है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से निर्णय लेता है। मित्रों, मैंने कुछ बातें केवल आपके सामने रखी हैं, बातें करने के लिए और भी बहुत से हैं, बहुत से और भी पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, और भी बहुत से पॉइंट दिए जा सकते हैं, लेकिन एक बात मैं निष्कर्ष के तौर पर कहना चाहूंगा कि देखिए, आईएएस बनना आसान काम नहीं है और बनना बहुत सम्मान की बात है, इसलिए यदि आपने फैसला किया है तो अपने आसपास की इन छोटी छोटी घटनाओं को अपनी कमजोरी का कारण मत बनने दीजिए। ये सब होती रहेंगी, पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, आप अपने पैरों को मजबूती के साथ धरातल पर बनाए रखिए, अपनी यात्राएं जारी रखिए। हम नहीं जानते कि हमारी यात्रा कहां खत्म होगी, यात्रा जारी रखिए, कहीं ना कहीं आप पहुंचेंगे ही। अगर आपका मन कमजोर पड़ेगा तो मान करके चलिए कि आईएएस बनने की जो संभावनाएं हैं वे धूमिल होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, जेसिका चामलिंग सिक्किम से, रोहिताश गुर्जर, भोलानाथ मोनांगी आंध्र प्रदेश से, विपिन त्रिपाठी वाराणसी से, संतोष राज, पुनीत कालरा ऑस्ट्रेलिया से, शिल्पी शर्मा, संगीतम, सुमन कुमारी और डोली शर्मा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।